यद्यपि अनंत काल से अनंत जन्मों में हम अनंत बातें सुन चुके हैं, अनंत काल से हम अनंत बातें सुन चुके हैं, उसमें से अधिकांश बातें मेटीरियल हैं, माइक हैं, प्राकृत हैं, संसारी हैं, अधिकांश बातें। परंतु अनंतानंद जन्मों में हमने आध्यात्मिक बातें भी सुनी हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत भी श्रवण किया है। श्रवण करके या तो हमने उसे सुना अनसुना कर दिया, या हमने उसे सुना कुछ परसेंट में माना और कुछ परसेंट में नहीं माना, यानी कि 100% हमने नहीं माना आध्यात्मिक सिद्धांत सुनने के बाद। जब तक हम आध्यात्मिक सिद्धांत 100% नहीं मानेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। बड़ा सरल सिद्धांत है, हम जो हैं दो चीजें हैं, एक ये पृथ्वी जल प्रकृति का ये बना हुआ शरीर, और दूसरा हम चिन्मय जगत की आत्मा। सरल सिद्धांत यह है कि इस शरीर के लिए ये संसार है और हम आत्मा के लिए परमात्मा है, बस यही सिद्धांत। इसको हमने किसी ने सुना अनसुना कर दिया, किसी ने थोड़ा सा माना, अपने अपनी सुविधा अनुसार मानिए। परंतु जब तक हम 100% नहीं मानेंगे तो जीवन में सुख आने वाला नहीं है। कोई बोले कोई बात नहीं, ऐसे भी चलता रहेगा। ऐसे चलता यदि रहेगा तो जो लोग खुश बातें मानते हैं, भगवान खुश नहीं मानते, उनको दुख भी है उसी मात्रा में स्पर्श करते जिस मात्रा में वो भगवान की बात नहीं मानते। कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे कैसे चलेगा, हम इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को। क्यों? क्योंकि यदि हम आनंद चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, तो हैप्पीनेस जो है वो स्पिरिचुअल जगत का शब्द है, इस संसार में खुशी प्राप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूं, मेरी डाइट क्या है, स्पिरिचुअल है, ये सिद्धांत अकाट्य है, इसे हमें समझना पड़ेगा। इस संसार की कोई भी चीज जीवात्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती, ना आज तक कर पाई है, ना अभी कर पा रही है, ना कभी कर पाएगी इस संसार की कोई भी चीज। हम अनेक प्रकार की कामनाएं करते हैं, कुछ देखने की कामना, कुछ स्पर्श करने की कामना, कुछ रस लेने की कामना होती है, कुछ सुनने की कामना होती है। इस प्रकार से हम हमारी जो इंद्रियां होती हैं उनके संबंध में हम कामनाएं करते हैं, और अनंतानंद जन्मों से हम भिन्न भिन्न कामनाएं करते आ रहे हैं और भिन्न भिन्न कामनाओं को तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देखने की कामना, अब प्रश्न उठेगा कि हमने आज के दिन ये विशेष क्यों लिया। आज का दिन तो जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का मतलब श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस, और श्री कृष्ण कौन है इस बात को अच्छी तरह जब हम नहीं समझेंगे तो कामना जो है, इच्छाएं तो हम करेंगे पर गलत क्षेत्र में करेंगे। कितने प्रकार की इच्छाएं होती हैं हमारी, देखने की, सुनने की, रस लेने की, सुनने की, स्पर्श करने की, ये 5 प्रकार की इच्छाएं रहती हैं हमारी। परंतु यदि हम ये नहीं समझेंगे श्री कृष्ण कौन है, तो ये जो सारी इच्छाएं हैं हमारी ये गलत दिशा में चलती रहेंगी। ये नयन है, नेत्र हमारे ये हम जब तक जब भी खोलेंगे कुछ ना कोई दृश्य सामने आएगा। नेत्र देखना चाहते हैं कुछ, क्यों देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि देख के आनंद मिलेगा, परंतु आनंद जगत का है नहीं, तो देख के क्या होगा, हमें लगेगा कि इस वस्तु में आनंद है, लगेगा सिर्फ, हम मानेंगे कि इस वस्तु में, इस व्यक्ति में आनंद है, हम केवल मानेंगे, मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें यह नहीं पता श्री कृष्ण कौन है, तो हम गलत जगह में आनंद मानते रहेंगे और उसकी चेष्टा करते रहेंगे। जैसे जो पुरुष किसी स्त्री में आनंद मानता है तो कुछ समय मानता है पर वही विवाह हो जाता है, विवाह उपरांत देखता है वो आनंद गायब हो गया। गायब क्यों हुआ, क्योंकि वो कभी था नहीं, हमने माना और थोड़े देर बाद जब मानने की भ्रांति हटी तो आनंद हट गया, हमने चित्त में आरोपित किया होगा इसमें आनंद है। यदि आनंद है तो सबके लिए समान होना चाहिए। उदाहरणार्थ जैसे शराब होती है, यदि शराब में आनंद हो तो वो सबके लिए होना चाहिए। एक पंडित जी के सामने यदि वो भोजन कर रहे हो और हम शराब देते हैं, वो छोड़ के भाग जाएंगे भोजन कि हम ये नहीं छूते, और दूसरा व्यक्ति जो आदि हो इस चीज का वो इसमें आनंद पाएगा। तो पंडित जी गलत है, ये व्यक्ति गलत, किसी चीज में कुछ नहीं हमने आरोपित किया हुआ है कि इसमें आनंद है। मैं क्या हूं, आत्मा, मेरी खुराक क्या है, परमात्मा। ये जगत जो है, ये मेटीरियल जगत जो है, इस मेटीरियल बॉडी के लिए है, मैं स्पिरिचुअल हूं, मेरी सारी खुराक स्पिरिचुअल ही है। इस बात को हमें अच्छी तरह 100% समझना होगा। ये बात हम नहीं समझते इसीलिए हम आंख खोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे, देखना गलत नहीं है, पर देखने के साथ उसमें आनंद प्राप्त होगा ये बात समझ लेना ये गलत। हम में से कई लोगों को देखने की बीमारी है, ज्यादा देखने की, विचित्र चीजें देखने की। जैसे कोई सोचता है अरे भाई हम बाहर नहीं गए, बॉम्बे हो आए, गोवा हो आए, वहां क्या करोगे, हमको देखेंगे उससे क्या होगा, आनंद मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। जो बॉम्बे गोवा हो गए उनसे बोले जाओ तुम्हारा अपना है, वहां इंग्लैंड जाएंगे, यूएस जाएंगे, कैनेडा जाएंगे। अच्छा, जो रोज हर थोड़े दिनों बाद नहीं जाते हैं उनसे पूछो वो क्या। तो जो भी चीज हमें प्राप्त जाती है उसके बाद हमारी वो भ्रांति हट जाती है उस चीज से कि इसमें आनंद था। जब तक प्राप्त नहीं होती कोई चीज तब तक ये भ्रांति रहती है केवल कि इसमें आनंद है, प्राप्त होने के बाद वह गायब हो जाती है। अब कई लोग विदेश जाते हैं पानी गिरता हुआ देखने के लिए, 30,000 फुट से पानी गिर रहा है उसको देखने के लिए, किस लिए कर रहे हैं वो देखना, इससे आनंद मिलेगा, आश्चर्य देखिए। हम इन नैनों से कितना देख सकते हैं, क्या क्या शक्ति है, कितनी कितनी आयु है हमारी, 60-70 साल की हमारी, हम कितना देख सकते हैं संसार का। कामनाओं का विशेष लक्षण ये है कि जितना हम इसको पूर्ति करने की कोशिश करेंगे उतना ये बढ़ती जाएंगी। जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि में यदि घी डालेंगे तो अग्नि और बढ़ती जाएगी। आप देखना, आपको देखने की काम में बीमारी है कि मेरे को ये देखना है वो देखना है, और देखोगे तो और बढ़ेगी, जितना देखोगे उतना बढ़ेगी। परंतु ये देखने की कामना यदि हम ईश्वरीय जगत में कर दें तो ये जल का काम करेगी अग्नि के ऊपर। कोई अग्नि देखने की जो है इधर उधर की चीजें भगवान के अलावा, वो सारी जो कामनाएं वो शांत होगी जितना हम इसे ईश्वरीय कामनाओं की ओर मोड़ेंगे। ये संसार कुल है कितना, 7,913 मील का ये संसार है पृथ्वी, और 150 इसमें लगभग देश है। पृथ्वी से कई गुना बड़ा है सूर्य, उसमें है सूर्य का लगभग लंबाई है 86,400 मील। ये जो सूर्य ग्रह है जिससे आप सबका भोजन तब जीवन चलता है। ये सूर्य ग्रह के इर्द गिर्द अनेक प्रकार के ग्रह होते हैं, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, यम ग्रह, अनेक प्रकार के ग्रह होते हैं जो सूर्य के चक्र लगाते रहते हैं। सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होता है यम ग्रह। ये जो है पृथ्वी का सूर्य का चक्र लगाता है लगभग 248 वर्ष में। अनेकों अनेकों ग्रह हैं इस आकाश गंगा में। एक जो सूर्य है, हमारा सूर्य, जिसकी लंबाई है 86,400 मील, इसके इर्द-गिर्द अनेक ग्रह घूमते हैं। और ये जो सूर्य है, ये जो है आकाश गंगा के चक्र लगाता रहता है। और ऐसे साइंटिस्ट कहते हैं इस समय इस आकाश गंगा में, कई साइंटिस्ट कहते हैं 1 करोड़ सूर्य हैं ऐसे, कई साइंटिस्ट कहते हैं 2 करोड़ सूर्य हैं। 2 करोड़ सूर्य, उसके इर्द गिर्द कितने प्लैनेट, उस प्लैनेट के अंदर कितने देश, कितने लोग। तो हम जो चीज देखना चाहते हैं तो करोड़ों करोड़ों करोड़ों, तो वर्ष तक हम गिनती भी करने लग जाएंगे कितने ब्रह्मांड हैं, तो हम गिनती भी नहीं कर पाए। करोड़ों वर्ष तक हम गिनती भी नहीं कर पाए कि ईश्वर की इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी रचना है ईश्वर की। और यदि देखने की बीमारी होगी हम क्या करते रहेंगे, मान लीजिए अनंत काल की उम्र दे दी जाए, अच्छा जी देखते रहो तो क्या करोगे, इधर से उधर जाके देखते रहोगे, कभी पहाड़ देख रहे हैं, कभी पानी देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। तो देख के क्या होगा, देख के यदि तृप्ति मिल जाती तो बस बात की थी, पर तृप्ति ना मिलने की बजाय ये अगली और जलना शुरू जाती है, और देखें और देखें और देखें, जिससे भी आगे तृप्ति नहीं मिलेगी। अगर हमें यह समझ नहीं आएगा कि मेरी थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म कुछ ना कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ कामना करेंगे देखने की, जब हम कामना जैसे ही करेंगे तो फंस जाएंगे। कामना करी के फंस गए, कैसे फंसे, कि यदि कामना करी पूर्ति हो गई तो लोभ बढ़ जाएगा, और यदि कामना करके पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा, आपको इच्छा करते हुए बात हुई नहीं हुई तो क्या होता है, क्रोध आ जाता है। पूरी हो जाती है तो क्या होता है, ग्रीड आ जाती है, लोभ आ जाता है। और पूरी ना हो तो क्या होगा, क्रोध आ जाएगा। तो कामना करी कि फंसे, संसार में आपको कोई नहीं बचा सकता। ये बातें सुनने में सरल लग रही हैं, सुनी हमने कई बार, मानी अपने अपने टेस्ट अनुसार, इसलिए जगत में अभी तक हम बार-बार जन्म ले रहे हैं। कामना करी कि फंसे, इच्छा हुई ईश्वर के अलावा कोई देखने की नहीं फलते, बिल्कुल फलते, कोई भी संसार में आपको बचा नहीं सकता। इंद्र के बारे में कहा जाता है ब्राह्मण पदम याचते, इंद्र जो है ब्रह्मा का फल देखता है, ब्रह्मा की इच्छा करता है। इंद्र के स्वर्ग लोक में क्या नहीं है देखने को, फिर भी ये कामना की बीमारी ऐसी, जितना देखोगे अग्नि का कार्य करेगी और बस अपने से ऊपर अंत में आके ब्रह्मा जी का लोक बनता है। तो हमें यह समझना होगा कि श्री कृष्ण जो है रस स्वरूप है। श्री कृष्ण को देखे बिना हमारी नयनों की जो अग्नि है वो कभी भी शीतल नहीं, शांत नहीं होगी। हमारे नयन कुछ देखना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, पर जब तक ईश्वर को नहीं देखेंगे, श्री कृष्ण को नहीं देखेंगे, तब तक ये अग्नि जो है ये शांत नहीं होगी, ये कभी भी कदापि शांत नहीं होगी। ईश्वर में ऐसा क्या है, हरि में ऐसा क्या है, हरि जो है, श्री कृष्ण जो है, ये हमारी तरह नहीं है, ये हड्डी मांस मज्जा से बना हुआ इनका शरीर नहीं है, पूर्णता चिन्मय है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के दर्शन के बारे में श्री गौरव महाप्रभु क्या कहते हैं, सनातन गोस्वामी को गौरव महाप्रभु कहते हैं कृष्ण माधुर्य अमृतेर सिंधु, कृष्ण का जो मधुर माधुर्य है अमृतेर सिंधु, अमृत का सिंधु है कृष्ण का, जो रूप जो है, जो माधुर्य जो है, ये अमृत का सिंधु है। जब लीला सुखबीर मंगल ठाकुर को श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो वो हतवाक रह गए, बिल्कुल चकाचौंध रह गए। क्यों? क्योंकि अनंत माधुर्य सिंधु हृदय समुच्वसित हो गया था। अनंत माधुर्य है, अनंत माधुर्य सिंधु। आप सोचिए सिंधु मतलब क्या होता है? ओशन। एक ओशन माधुर्य का है जो उसमें बहुत ऊंची तरंगे आ जाए तो ओशन कैसा रहेगा? थोड़ा सा पानी नहीं, जलाशय नहीं बोल रहे, सिंधु ओशन, सुंदरता का सौंदर्य सिंधु। कृष्ण क्या है? यह आकर्षणी सह कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं अपनी ओर, वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है माधुर्य का, सौंदर्य का सिंधु है। उनका जो कृष्ण का जो बदन है, बदनारविंदम, बदनारविंदम चरणारविंदम मुखारविंदम, ये जो है एक से एक बढ़ के सौंदर्य में अधिक है। जब श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम होता है तो श्री कृष्ण हमें अलग रूप से दिखाई देते हैं, हम श्री कृष्ण की ओर अलग रूप से मुक्त होते हैं। यशोदा माता श्री कृष्ण के प्रति अलग रूप से मुक्त है। यशोदा माता की तरह जो मात्र स्थानियां हैं श्री कृष्ण की ओर अलग रूप से मुक्त, उनको भी बहुत सुंदर लगते हैं श्री कृष्ण, परंतु सखाओं से ज्यादा सुंदर सखा जो है श्री कृष्ण तक अलग रूप से मोहित है, मुक्त है। श्री कृष्ण सबको एक समान नहीं लगते कभी। ब्रजरस उपासना का क्या लक्ष्य है? परम चरम श्री कृष्ण माधुर्य का सम्यक रूप से आस्वादन करना। सम्यक रूप से कैसे आस्वादन होगा? जब हमारा पूर्ण प्रेम होगा। पूर्ण प्रेम किसका है श्री कृष्ण के प्रति? राधा रानी का। तो राधा रानी एकमात्र व्यक्ति है जो श्री कृष्ण के माधुर्य सिंधु को सम्यक रूप से पान करती है। श्री कृष्ण रूप सौंदर्य जो है लावण्य, असाधारण लावण्य जो है जो उनके रोम रोम से निकलता है, उसका सम्यक रूप से पान जो है वो प्रेम के अनुसार किया जाता है। जिस दर्जे का प्रेम श्री कृष्ण में होगा उस दर्जे का आस्वादन व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण का जो मुख चंद्र है, मुख कमल है, भक्त जो होते हैं भवने की तरह होते हैं, मुख कमल को जैसे ही भवना देखते हैं तो क्या करना चाहता है? पान करना चाहता है। तो हर भक्त श्री कृष्ण के मुख कमल का पान कर रहा है, पीता है। कहां कहां से पीता है? यहां से पीता है, मुख से। कहां से पीता है? कानों से पीता है। और कहां से पीते हैं श्री कृष्ण को? नैनों से पीता है। श्री कृष्ण का पान किया जाता है, ये है श्री कृष्ण। कहां से पान? नैनों से। कहां से? कर्णों से। कहां से? मुख से। अमृत स्वरूप है श्री कृष्ण। और यदि हम श्री कृष्ण के माधुर्य सिंधु का सम्यक रूप से पान करना चाहते हैं तो हमें श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना होगा, क्योंकि राधा रानी के आश्रय से, राधा रानी की कृपा से जो वो पान करती हैं, वो सम्यक पान जो है सखी मंजरियों में भी प्रवाहित हो जाता है। शूद्र जीव का शूद्र प्रेम होता है, इसलिए वो शूद्र रूप से पान कर सकता है श्री कृष्ण के माधुर्य का, परंतु राधा रानी का चरण आश्रय लेके, राधा रानी के प्रति समर्पित संत हैं, उनका चरण आश्रय ले, ब्रजधाम का आश्रय ले, तो इन सबकी कृपा से हम श्री कृष्ण के माधुर्य का सम्यक रूप से पान कर सकते हैं। श्री कृष्ण मतलब सबसे सुंदर व्यक्ति। अब श्री कृष्ण सबसे सुंदर हमेशा लगते हैं क्या? सुंदर तो है, और उनकी सुंदरता जो है वर्धित होती रहती है। श्री कृष्ण जो सुंदर लगते हैं शोर माता को तब भी सुंदर होते हैं, परंतु उससे ज्यादा सुंदर लगते हैं सखाओं को। परंतु श्री कृष्ण सबसे सुंदर स्वरूप क्या है? सुंदर वर। क्या? कौन सा स्वरूप का सुंदर वर? कौन सा स्वरूप है श्री कृष्ण का सुंदर वर? अप्राकृत नवीन मदन। जब वो साक्षात अप्राकृत कामदेव होते हैं, रूप में होते हैं, तब फिर उनका सौंदर्य माधुर्य सबसे ज्यादा विकसित होता है। यशोदा के सामने श्री कृष्ण कभी भी साक्षात मनमत नहीं होते, कामदेव के रूप में नहीं होते। सखाओं के सामने श्री कृष्ण कभी भी साक्षात कामदेव के रूप में नहीं होते, परंतु ब्रज सुंदरियों के आगे, ब्रज किशोरियों के आगे, ब्रज बालाओं के आगे श्री कृष्ण हमेशा साक्षात कामदेव के रूप में होते हैं। इसलिए जो वास्तव में श्री कृष्ण माधुर्य का या आनंद का वास्तव में सम्यक रूप से पान करना चाहते हैं, वह श्री कृष्ण से ये निरंतर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें रमणी दे दें, रमणी देव स्त्री दे दें। स्त्री दे ये वाला नहीं जिनमें जगत का स्त्री दे, वो वाला भी उससे काम चल जाएगा नहीं, क्योंकि यशोदा माता की स्त्री देने हैं, परंतु क्या मैं स्त्री देखा तो काम हो जाएगा नहीं। केवल वो हमारे को ब्रज वधुओं को ही श्री कृष्ण का सम्यक रूप से पान होता है। तो भक्त जो है निरंतर ये प्रार्थना करते हैं कि हमें रमणी दे दें, हमें वो दे दें जिस जो महाभाव से बना हो, क्योंकि महाभाव के देह के बिना श्री कृष्ण का सम्यक रूप से पान किया नहीं जा सकता। वास्तव में ये आंखें जो है, ये आंखें हमें हर समय याद दिला सकती हैं कि हमें श्री कृष्ण चाहिए। आंखें खुले याद हो जाना चाहिए हमें श्री कृष्ण चाहिए। इस संसार को देखते नैनों को आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। इस संसार की कोई भी चीज देख लेंगे वो थोड़े देर बाद क्या हो जाएगी, स्टेल हो जाएगी। स्टेल स्टेल हिंदी में क्या बोलते, बासी हो जाएगी। अब देखो वही स्त्री पुरुष एक दूसरे प्रेम करते हैं, थोड़ी देर बाद लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्यों, बासापन आ जाता है। परंतु श्री कृष्ण का सौंदर्य जो है नित्य नवमंथन है, उनकी जो सौंदर्य शोभा है नेत्रों की ही, वही नित्य नित्य निरंतर बढ़ती रहती है। श्री कृष्ण का जो मुख कमल है वो क्या है, नयनों के लिए उत्सव है, नयन उत्सव। इसका मतलब समझ लिया आप कितनी बड़ी बात है। दर्शनानंद तो होता है श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के दर्शन में क्या होता है, आनंद तो मिलता है, पर यह बात पूरी नहीं है। श्री कृष्ण का जो मुख कमल है वो क्या है, नयन उत्सव है। उत्सव में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, उत्सव फंक्शन में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें होती हैं जिससे आनंद प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण का जो मुख कमल ही है वही अपने आप में इतना बड़ा उत्सव है। श्री कृष्ण का शरीर कैसा है, आचार्यगण बताते हैं ऐसा लगता है जैसे कि ज्योति को, नील ज्योति को निचोड़ के स्थिर करके एक रूप दे दिया गया हो, वो श्री कृष्ण का रूप। एक आध्यात्मिक नील कांति को निचोड़ के स्थिर करके एक रूपांतरण कर दिया गया हो, वो श्री कृष्ण का रूप है। श्री कृष्ण के रूप में विविध 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 प्रकार के भाव तरंगे उठती रहती, क्योंकि क्या है वो, माधुर्य सिंधु। सिंधु शब्द को हमेशा याद रखिएगा, सिंधु में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगे उठती रहती हैं। किस प्रकार से तरंगे उठती हैं, जिस प्रकार के भक्त का प्रेम होता है उस प्रकार से श्री कृष्ण के मुख कमल में भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगे उठती रहती हैं। तो श्री कृष्ण सुंदर होते हैं, परंतु जितना ज्यादा प्रेम श्री कृष्ण करने वाला होगा उतने ज्यादा श्री कृष्ण और सुंदर प्रतीत होंगे, और ज्यादा उनके मुख चंद्र का, मुख कमल का पान कर पाएंगे। श्री कृष्ण के मुख कमल का पान, मुखामृत का पान तो सभी भक्त करते हैं, परंतु जिस मात्रा में प्रेम होगा, जिसका जितना प्रेम होगा वो उतना श्री कृष्ण का पान कर पाएगा। श्री कृष्ण जो माधुर्य सिंधु है, उनका उनके जो नयन है वो स्वभाव से ही बहुत बड़े हैं, कान तक पहुंचते हैं, परंतु जब वो ब्रज बालाओं के साथ होते हैं तो उनके नयन और विस्फारित हो जाते हैं, और बड़े हो जाते हैं। और जब श्रीमती राधा रानी के साथ होते हैं तो अत्यंत विस्फारित हो जाते हैं, और सुंदर स्वाभाविक सुंदर नेत्रों में और सुंदरता उनकी बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, जब वो श्रीमती राधा रानी के साथ होते हैं। परंतु श्रीमती राधा रानी के साथ होते भी और सुंदर कब हो जाते हैं श्री कृष्ण, जब वो राधा रानी के साथ एकांत में निवृत्त निकुंज में होते हैं। देखिए कृष्ण एक रहस्य हैं सबके लिए। कृष्ण के कईयों के लिए कृष्ण क्या है? एक राजा है। कईयों के लिए कृष्ण क्या है? एक ग्वाला है। कईयों के लिए कृष्ण क्या है? द्वारकाधीश है। कईयों के लिए क्या है? गीता के प्रवक्ता है। तो कृष्ण जो है जिस पर जिस भाव से जो देखा जाता है वैसे हैं, और वास्तव में श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो क्या है? रस स्वरूप, अमृत स्वरूप, ये है श्री कृष्ण। और जीव को नैनानंद नैनों का आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा जब तक उसे श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। जन्माष्टमी वास्तव में अगर हम मना के जा रहे हैं तो ये बात हमारे यहां अगर बैठ जाए, सुनना नहीं बिठाना। कई लोग घर में आते हैं चले जाते हैं, कानों से कई बातें आई और चली गई। ये अगर बात बैठ जाए हमारा हमारे मन में तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जब तक ये बात नहीं बैठेगी बस नैनों चक्कर लगाते रहेंगे अनंत ब्रह्मांडों में। हम कितनी बार नित्य लोग गए हैं, कितनी बार स्वर्ग लोग गए हैं, कौन कौन से लोग नहीं गए हम, कौन कौन से लोग, कितनी कितनी चीजें हमने नहीं देखी। उसके बाद एंड में क्या है? और परंतु एक बार यदि श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति कामना नहीं करता। और गोपियां कहती हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करे उनके नयन निरर्थक है, उसका अर्थ ही कोई नहीं, बस केवल चक्कर लगा दिया। ये जो कामना है, कामना इच्छा, ये दौड़ाती तो बहुत है पर पहुंचाती कहीं नहीं, बहुत दौड़ाएगी। अमेरिका पानी देने जाओ गिरा हो, या मैं चांद पे जाना चाहता हूं, ऐसी बेवकूफी की इच्छाएं जिसका कारण क्या है ये बात हमारे हृदय में बैठ नहीं पा रही। मेरे नेत्रों का पान, मेरे कानों का पान, मेरे मुख से पान, मेरे हाथ से जो पान है वो सब श्री कृष्ण की प्राप्ति से ही सब सफल होगा। मुझे तृप्ति जो है श्री कृष्ण के अलावा किसी से भी प्राप्त नहीं होने वाली। ये कथा जो हमारे हृदय में बैठ जाए तो गौरव महाप्रभु हमारे हृदय में साक्षात आ जाए। वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते हैं? ए सकल पुण्य कथा जे करे श्रवण, ए सकल पुण्य कथा जे करे श्रवण, भक्त संगे गोरा चंद्र राहु तारमान,
भक्त संगे गोरा चंद्र राहु तारमान,
ए सकल पुण्य कथा जे करे श्रवण,
ए सकल पुण्य कथा जे करे श्रवण,
भक्त संगे गोरा चंद्र राहु तारमान,
भक्त संगे गोरा चंद्र राहु तारमान,
ए सकल पुण्य कथा जे करे श्रवण,
ए सकल पुण्य कथा जे करे श्रवण,
भक्त संगे गोरा चंद्र राहु तारमान,
भक्त संगे गोरा चंद्र राहु तारमान।
ये जो पुण्य कथा है इसका सही रूप से श्रवण अगर हम कर लें, मतलब कि इस कथा को अपने हृदय में बिठा लें, ये सकल पुण्य कथा जे करे श्रवण, जो श्रवण कर ले सही रूप से कि श्री कृष्ण ही नयनानंद है, नयनोत्सव है, दर्शनानंद है, उसके साथ क्या होगा? भक्त संगे गोरा चंद रहु तारमन, भगवान गौरांग महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अब उस व्यक्ति के मन में निवास करेंगे। बस इस बात को बिठा लें तथ्य तथ्य भी। महाराज परीक्षित का नाम आपने सुना हो, महाराज परीक्षित को गर्भ में रक्षा किसने की थी? भगवान श्री कृष्ण ने। उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र चला दिया गया था तो किसने रक्षा की थी? श्री कृष्ण ने। उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? कि उन्होंने गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे, तो बाहर जैसे ही गर्भ से आए जब भी नयन होते तो परीक्षा करते, ये तो वो नहीं है, आनंद ही मिलेगा। फिर देखा किसी को परीक्षा करी, नाम है परीक्षित, परीक्षा करने वाले, तो परीक्षा करी, ये तो वो नहीं है जिनको देखा था मैंने, इनसे आनंद नहीं मिलेगा, ये तो वो नहीं है, ये तो वो नहीं है, तो जो है उसको पकड़ के बैठ गया, इसका मतलब हमने कथा को अपने हृदय में सही रूप से बिठाया। एक बारी कथा बैठ जाएगी, श्री कृष्ण बैठ जाएंगे तो किसी के बैठने के लिए स्थान नहीं रहेगा। श्री कृष्ण रस स्वरूप है, ये पुस्तकों में ग्रंथों में प्राप्त होता है, परंतु गुरु जो है, जो वैष्णव संत जन है, वो उस अमूर्त रस स्वरूप श्री कृष्ण को अपनी कथा के माध्यम से मूर्त रूप में हमारे सामने ले आते, जिससे प्रैक्टिकली हम आस्वादन कर सके, साधना कर सके, जिससे हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। ये जो खालीपन है नयनों का, जो नयन हमेशा देखना चाहते हैं कुछ ना कुछ, ये किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से अनंत काल में कभी भी ये खालीपन पूर्ण नहीं होने वाला, ये वॉइड कभी भी फुलफिल नहीं होने वाला, जितना मर्जी हम इसमें डाल दें कुछ भी। हम कुछ ना कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं नयनों के माध्यम से, खुश हो जाओ, आत्मा को खुराक दे रहे, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, परंतु एक ही खुराक है। हम कुछ ना कुछ फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कृष्ण के अलावा आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को केवल और केवल परमात्मा चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए, केवल श्री कृष्ण चाहिए। और श्री कृष्ण की तुलना संसार में किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। श्री कृष्ण जो है अनंत माधुर्य सिंधु है। जब श्री कृष्ण के दर्शन लीला शुक को प्राप्त हुए, लीलमंगल ठाकुर को, तो एकदम हतवाक हो गए, इतने सुंदर, इतने सुंदर, एकदम एकदम चकाचूंध हो गए, श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं। उनके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को यही कहा, हे श्री कृष्ण, आपका जो सौंदर्य है, ना तो वह मेरा मन ग्रहण कर सकता है, ना मैं उसे ग्रहण कर सकता हूं। आपका सौंदर्य है, इसका आस्वादन केवल आप ही कीजिए, मैं तो इसका आस्वादन कर ही नहीं सकता। जब श्री कृष्ण का, तो भगवान ने उनसे बात करी कि तुम मेरा आस्वादन नहीं कर सकते, तो कुछ व्यक्त तो कर दो, मेरा माधुर्य है कैसा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके माधुर्य को व्यक्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि श्री कृष्ण का जो माधुर्य है वो अनंत सिंधु के समान है, इनफाइनाइट ओशन के समान। तो वीरमंगल ठाकुर ये सोचने लगे, ऐसी कौन सी भाषा का प्रयोग करूं जिससे सिंधु का एक बिंदु तो कम से कम वर्णन कर सकूं। जिस सिंधु का वो आस्वादन कर रहे हैं, वो सिंधु का एक बिंदु तो वर्णन कर सकूं, वो ऐसी भाषा खोजने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो एक ऐसी भाषा प्राप्त नहीं कर पाए कि कुछ वर्णन कर सके श्री कृष्ण का। तो अंत में आके क्या बोलते हैं, स्तब्ध हो गए, हे श्री कृष्ण, दर्शन करके स्तब्ध हो गए। और जैसे ही श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराया तो सितार निकली, हे श्री कृष्ण, आपके माधुर्य का पान करने की क्षमता मुझ में नहीं है, आपके माधुर्य का वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है, मैं केवल आपको बारंबार अंजलि बद्ध होकर प्रणाम ही करता हूं, मैं आपके माधुर्य की तुलना भी किसी से नहीं कर सकता। कई लोग श्री कृष्ण के माधुर्य को कंपेयर करते हैं चंद्र से, आपका श्री कृष्ण का मुख चंद्र बहुत सुंदर है, अब चंद्र और श्री कृष्ण की तुलना नहीं हो सकती। जो चंद्रमा होता है, जो पूर्ण चंद्र होता है, वो हर रोज क्या होता है, कम होता है, ह्रास होता रहता है, और अमावस्या के दिन तो वो, तो क्या श्री कृष्ण सौंदर्य ऐसा है कि प्रतिक्षण कम हो रहा है, नहीं, वो तो प्रतिक्षण बढ़ रहा है। तो कृष्ण का मुख चंद्र भी बोल नहीं सकते कि मुख चंद्रमा के समान बहुत सुंदर है, क्योंकि श्री कृष्ण का माधुर्य चंद्रमा की तरफ बढ़ने की जैसा विपरीत है, निरंतर वर्धित हो रहा है। और श्री कृष्ण के जो मुख है उसमें कोई कलंक नहीं है, चंद्रमा के ऊपर तो इतना बड़ा काला धब्बा है, कलंक है। तो श्री कृष्ण से चंद्र का के साथ कंपैरिजन करना यह भी गलत है। ये श्री कृष्ण बार बार बोल रहे हैं, तुम वर्णन नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते तुम मेरा वर्णन, अनेक अनेक कवियों ने मेरा वर्णन किया, कोई बोलता है चंद्र के समान हो आप, कोई बोलता है आपका मुख कमल बहुत सुंदर है, आपने सुना है कि मुख चंद्र भी बोलते हैं, मुख कमल भी बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं, मेरे मुख को तुम कमल के साथ तुलना क्यों नहीं कर देते, लोटस फेस, लोटस आईज, ऐसे क्यों नहीं तुलना कर देते। तो वीरमंगल ठाकुर कहते हैं, भगवान आप कैसी बात कर रहे हो, जब मैं आपकी तुलना चांद से नहीं कर सकता, तो चांद से आधार रखता है, कमर को उससे तुलना कैसे कर सकता हूं। जब चांद आता है तो कमर बंद हो जाता है, ये तो कमर की स्थिति है। चांद के प्रकट होने से कमर बंद हो जाता है, तो जब चंद्रमा से ही मैं आपके मुख की तुलना नहीं कर सकता तो कमल से कैसे करूंगा। भगवान कहते हैं कई लोगों ने तो किया है, तो तुम क्या कहना चाहते हो इसके बारे में। वीरा शुक कहते हैं हे भगवान, वो अपने बस काव्य माधुरी, अपनी कविता को किसी रूप से बोलने के लिए, बस काव्य माधुरी का बढ़ाने के लिए आपके मुख को कभी चंद्र बोल देते हैं, मुख कमल, कमल नयन, नलिनाक्षी, नलिनाक्ष, इस प्रकार से बोल देते हैं। और वास्तव में आपका वर्णन करने योग्य कोई भाषा है, आपके आपके तुलना करने योग्य तो केवल आप ही आप हो, आपके तुलना करने योग्य तो नारायण भगवान भी नहीं है जिससे तुलना भी की जा सके। भगवान ने बोले कलंक होने से क्या, चंद्र तो बोल ही सकते हो, मुख चंद्र आपका अच्छा है। लीलाशुक बोले हे भगवान, मैं आपका वर्णन चंद्र के साथ कभी नहीं कर सकता, मेरे लिए तो चंद्र ऐसे है जैसे कर्पूर होता है ना आरती करने के लिए, कर्पूर आरती करके उठा के बाहर रख दिया जाता है, उसी प्रकार से मैं तो चंद्रमा को बिठा के आरती करके चंद्रमा को बाहर रख, इस प्रकार से मेरे मेरे नजर में चंद्र है। तो श्री कृष्ण का जो एक बारी सम्यक रूप से पान कर ले, एक बारी झांकी प्राप्त हो जाए श्री कृष्ण की, उसको संसार की कोई भी चीज सुंदर नहीं लगेगी, क्योंकि उसको सबसे सुंदर चीज प्राप्त हो चुकी। और जब जब तक ये सुंदर चीज प्राप्त नहीं होगी, ये पैराडॉक्स चलता रहेगा। हम देखेंगे कोई चीज को, या तो हमें देख के क्या होगा, तृप्ति तो होगी नहीं और लोभ बढ़ जाएगा, नहीं तो प्राप्ति नहीं होगी तो क्रोध हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छी तरह इस बात को समझ के अपने हृदय में बिठाना है। श्री कृष्ण का रूप हमने सुना, स्वरूप के बारे में सुना, उसको बार बार रिविजन करेंगे तो उसमें आसक्ति होगी। संसार में भी जो आसक्ति अटैचमेंट होती है वो कैसे होती है, किसी चीज के अंदर हम अनंत को मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने स्त्री के अंदर अनंत मान लिया, तो उसको बार बार अनंत माना, अनंत मिला नहीं बोल रहे हम, मिला नहीं है, अनंत माना, अनंत माना, उसकी बार बार रिवीजन करें, तो रिवीजन की मात्रा में जितनी रिवीजन होगी उतनी आसक्ति होगी। पहले कोई चीज जब माने उसका बार बार रिवीजन करें, जिस मात्रा में रिवीजन होगी उसी मात्रा में आसक्ति होगी। भौतिक जगत में भी ऐसा ही होता है और आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही होता है। श्री कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में जितना हम रिवीजन करेंगे, उनका मुख कमल कैसा है, मेरी खुराक क्या है, जितना हम इसका रिवीजन करेंगे उसी मात्रा में श्री कृष्ण से, राधा रानी से आसक्ति होगी। रिवीजन नहीं करेंगे आसक्ति कभी नहीं होगी। इस संसार में पहली बार सुन के किसी चीज में आसक्ति किसी की नहीं होगी, पहली बार सुन के किसी चीज में आसक्ति, सुना, चर्चा करी वैसे लोगों से, बार बार मनन किया, आसक्ति होगी। यही जो कार्य है ये हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में करना, श्री कृष्ण के भक्तों से उनकी कथा सुननी है बारंबार, ताकि जैसे उनकी कृष्ण में आसक्ति है, निष्ठा है, हमारी भी वैसे ही आसक्ति निष्ठा उत्पन्न हो। श्री कृष्ण के भक्त जो हैं, खासकर जो धाम से आते हैं, वो ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं होते। गोलोक में रहने वाले, पद्म पुराण में शिव जी पार्वती को बताते हैं, गोलोक में रहने वाले प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष जो हैं साक्षात कृष्ण और विष्णु का दशांश से बने हुए होते, इसलिए सारे ही स्त्री और पुरुष लक्ष्मी व विष्णु स्वरूप होते, विष्णु और लक्ष्मी के दशांश से बने हुए होते। कोई हमें पता कहता है कि आप श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हो, आप तो पागल हो गए हो, आप तो संसार को छोड़ के बैठे हो, तो हम थोड़े शर्मा से जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। वास्तविकता तो अंदर से क्या होनी चाहिए कि मैं श्री कृष्ण को प्रेम करने की चेष्टा हो कर रहा हूं, पर कर नहीं पा रहा हूं, चेष्टा कर रहा हूं, ये हमारे हृदय में मान होना चाहिए कि मैं चेष्टा कर रहा हूं, ये हमारे हृदय में मान होना चाहिए कि हाँ मैं श्री कृष्ण का भक्त बनने की चेष्टा कर रहा हूं। इस संसार में प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, किसी संबंध में कोई प्रेम नहीं है। जो भी हमें आस्वादन प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा, वो श्री कृष्ण के संबंध के साथ ही प्राप्त होगा। तो इस संसार में अनंत बारी लाज खाते हैं मां से, पिता से, जब जब वो हमारी बात नहीं मानते तो हम क्या सोचते हैं अंत में, ये संत लोग ठीक ही बोलते थे, संसार में बिल्कुल प्रेम नहीं है, ये माता पिता भी सब मतलबियां सब स्वार्थी हैं, और वही माता पिता थोड़ी देर बाद नकली मुखौटा लगा के या नकली हंसी बना के आके हमारे मुस्कान कर देते हैं, तो फिर हम सोचते हैं अरे नहीं नहीं मैं भी कहूँ मेरी पत्नी तो ऐसी नहीं है, मेरे पिता तो बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ी देर बाद वो सिद्धांत जो है भूल जाते हैं। जब थोड़ी डांट पड़ी लड़ाई हुई तो क्या हो गया, संसार से डिटैचमेंट हो गया। जैसे ही वही माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे ने प्रेम से बात करी तो फिर से क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया। थोड़ी सी लड़ाई हुई तो क्या हो गया, डिटैचमेंट। फिर से थोड़ी सी प्यार से बात करी तो क्या हो गया, अटैचमेंट। एक दिन में 10 बारी डिटैचमेंट होता है और 10 बारी अटैचमेंट होता है, तो ये पागल व्यक्ति नहीं है तो क्या है व्यक्ति, जिसका दिन में 10 बार अटैचमेंट डिटैचमेंट अटैचमेंट डिटैचमेंट होगा, बिल्कुल मैड मैन है, फुल्ली मैड, फुल मैड। यदि कोई हमारे को बोल दे तुम तो बिल्कुल पागल हो, तो हमें गुस्सा चढ़ जाता, तो बोले आपको हाफ मैड हो तो क्या हो, गुस्सा चढ़ जाएगा मुझे मैड का, अरे हाफ मैड तुम फुल मैड हो, हाफ मैड की क्या बात करी, दिन में तुम्हें 10 बार अटैचमेंट उसी से और 10 बार डिटैचमेंट उसी व्यक्ति से हो रही है, तो तुम इंटेलिजेंट हो क्या, और जरा सा कोई कुछ कहते कि आप में बुद्धि कम है, क्या कहा, मुझमें बुद्धि कम है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं चिन्मय हूं, मेरी खुराक चिन्मय है, मेरे नयनों को आनंद प्राप्त होगा श्री कृष्ण के दर्शन से ही, जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तब तक हम जितनी मर्जी जन्माष्टमी मना लें, वास्तविक जन्माष्टमी हम नहीं मना रहे, वास्तविक जन्माष्टमी हम नहीं मना रहे। जब हीरा शुक ने बोला हे श्री कृष्ण आपका माधुर्य आस्वादन करने में मैं तो सक्षम नहीं हूं, आप ही अपना माधुर्य आस्वादन करो, तो इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है। श्री कृष्ण औरों को तो छोड़िए, श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि वो अपना माधुर्य स्वयं आस्वादन करना चाहते हैं। आपने कभी सुना है कोई अपने आप को चेहरे में देखकर अपना माधुर्य अपना रूप को स्वयं आस्वादन करना चाहे, नहीं। परंतु श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं जब दर्पण में अपने आप को देख लेते हैं तो स्वयं का आस्वादन करना चाहते हैं, और इसी इच्छा से वे गौर होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु बनते हैं श्री कृष्ण, तो वो अपने भक्तों का संग करते हैं, और जो कथा का हम जैसे अभी पान कर रहे हैं, जैसे ही वो कथामृत का पान करके परमानंदित होते हैं। और यदि हम वास्तव में श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण के भक्तों के साथ रहना चाहिए, जैसे गोरख महाप्रभु स्वयं रहे कृष्ण कथामृत का पान करने के लिए 24 साल के बाद, जो अंत के 24 साल थे जब संन्यास लिया था महाप्रभु ने, उसमें से 18 साल महाप्रभु केवल श्री कृष्ण कथा का पान ही करते रहते, गंभीरा में रहते 18 साल केवल श्री कृष्ण कथा का पान करते, किसी से भी नहीं मिलना, कुछ कोई इंटरेक्शन नहीं संसार में। श्री कृष्ण जो है नयनों का भी अमृत है, कर्ण के लिए भी कर्णामृत भी है, नयनामृत भी है, और जीव के लिए भी अमृत है आस्वादन, हर परम अमृत स्वरूप है श्री कृष्ण। और हम सखी मंजरियां जो है, हम सबको कौन से श्री कृष्ण की आराधना, हमारे लिए कौन से श्री कृष्ण सबसे मनोहारी है, जो राधा अधीन श्री कृष्ण है, जो राधा के अधीन श्री कृष्ण है, ऐसे श्री कृष्ण हमारे को सबसे ज्यादा प्रिय है। जो श्री कृष्ण जो है राधा रति आसक्त है, राधा रानी पूर्ण रूप से आसक्त है, ये श्री कृष्ण हमें समय सबसे हमारे प्राप्त कामनीय वस्तु है। श्री कृष्ण का पान करना बिना राधा रानी के आश्रय लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे समुद्र प्राप्त हो सकता हो और हम केवल एक बिंदु से संतुष्ट हो। तो आप सब जितने भी भक्त हैं इस बात को बार बार रिवीजन कीजिए, मैं कौन मेरा कौन, मैं आत्मा मेरे परमात्मा श्री कृष्ण, इस बात का बारंबार रिवीजन कीजिए। बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं करने हैं, इसी बात का रिवीजन करना है। जिस मात्रा में रिवीजन होगा उसी मात्रा में इंटेलिजेंस शार्पन होगी। जिनका फिर से कथा श्रवण करके फिर से भौतिक विषयों में मन चला जाता है, सबकी प्रॉब्लम है कि रिवीजन नहीं करते कथा का, सुना बैठी नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठी फिर चली गई। तो श्री कृष्ण कथा का सही रूप से रिवीजन कीजिए, और अपने जीवन को सफल बनाइए और इस जन्माष्टमी को सफल बनाइए। आप सबका इस महामहिमामय जन्माष्टमी में आप सब यहाँ पधारे हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। ये कथा आपको श्रवण करने का मौका मिला है, ये भी आपको बहुत बहुत पुण्य एकत्रित हुए हैं, तो वास्तविक श्रीकृष्ण कथा श्रीकृष्ण के पान करने का मौका प्राप्त हुआ है। और वास्तव में इसे अगर पूरे जीवन को आज का दिन जो सफल हुआ, परंतु यदि पूरा जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो इस बात को ढंग से अपने हृदय में बिठाइए, ताकि नए जो है श्रीकृष्ण के अलावा बहुत कुछ कभी चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।